ऐसा सोचा कि थोड़ा स्थित प्रज्ञ के ऊपर थोड़ा बोला जाए। स्थित प्रज्ञ क्या चीज है? मनुष्य के अंदर और बाहर दोनों तरफ संघर्ष चलते हैं। बाहर का यदि संघर्ष आप जीत जाते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा मान की प्राप्ति होती है, और यदि अंदर का संघर्ष आप जीत जाते हैं तो ईश्वर की अनुभूति होती है। पद प्रतिष्ठा मान ये जड़ हैं, ये आप हैं तो इनकी कीमत है, आप नहीं तो इनकी कोई कीमत नहीं है। अर्जुन वर्तमान में जो संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष में उसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, आपको मालूम है। जीवन में परमात्मा सारथी है और फिर भी प्राप्त क्या करना है? अर्जुन भी वही प्राप्त करना चाहता है जो दुर्योधन प्राप्त करना चाहता है। ऐश्वर्य आपने न्याय से प्राप्त किया या अन्याय से प्राप्त किया? ऐश्वर्य कभी आपके साथ में जाने वाला है नहीं, ऐश्वर्य का स्वभाव है। इतना बड़ा संघर्ष ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है, लेकिन जीवन में जब आप संघर्ष करते हैं उस संघर्ष के समय आप किन लोगों के साथ में रहते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। महत्व उसी चीज का है। यदि आप संघर्ष के समय बुरे लोगों के साथ में रहते हैं ना, तो आप जड़ वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेतन की हत्या कर देते हो। भर्तृहरि ने लिखा, धनम यदि मेरु तुल्यम, मानो कि धन सुमेरु पर्वत के समान मिल गया, और परमात्मा के चरणों में थोड़ा प्रेम नहीं है, ततः किम, फिर क्या मतलब है उसका? हमने देखा बड़े बड़े महापुरुष चले गए, बड़े संघर्ष करके, जिन आश्रमों में कभी भजन करने वाले महात्मा रहते थे हम आज कबूतर लड़ते हैं उधर। इसलिए जीवन में वासनाओं की मर्यादा व्यक्ति को पहले निश्चित करनी चाहिए। यदि वासना की मर्यादा निश्चित नहीं की जाएगी तो आपके जीवन की मर्यादा निश्चित हो जाएगी। जीवन तो निश्चित है, जीवन नहीं बढ़ सकता आपका। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण में थोड़ा एक आप इसका भाष्य की छोटी सी अंतिम में जो इसका जो प्रश्न का बीज है ना, वो यदि समझने की कोशिश करेंगे, जैसा एक छोटा सा बीज होता है ना, वो अपने आंचल में सारा पेड़ छुपाए रखता है, कहीं दिखाई नहीं देता वो पेड़। ऐसे ही जो व्यक्ति ऐश्वर्य के लिए संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति के चित्त में अचानक ईश्वर की जिज्ञासा कैसे हो गई? तो भाष्यकार ने थोड़ा 53 श्लोकों की जो अंतिम पंक्ति है उसमें बात लिख दी अंतिम में, तस्मिन् काले योगम विवेक प्रज्ञाम। विवेक जब आदमी के पास में होता है तब आदमी ऐश्वर्य और ईश्वर का फर्क समझता है, सुख और सुविधा का फर्क समझता है। अभी आप प्रेमपुरी में बैठे हैं, ये सुख है। घर में जो आप बैठे थे सोफे पे, चाय की प्याली पी रहे थे, चुस्की ले रहे थे, वो सुविधा है। लेकिन विवेक न होने के कारण व्यक्ति सुविधा को सुख समझ लेता है, और जितना पुरुषार्थ सुख प्राप्त करने के लिए करना है उतना ही पुरुषार्थ वो सुविधा को प्राप्त करने के लिए करता है। हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप करते हैं, मैं करता हूं, लेकिन सारा प्रयास जो है वो सुविधा प्राप्त करने के लिए है। इसलिए इसके लिए मनुष्य को विवेक होना जरूरी है, और विवेक का जो कारण है वो क्या है? सत्संग, आत्मदेव का साथ। अभी महाराज जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, आत्मदेव का साथ। ये आत्मदेव कोई और नहीं, ये श्री कृष्ण ही आत्मदेव हैं। अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में गया था मदद मांगने के लिए, तो वो कृष्ण का उपयोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए करना चाहता था, कृष्ण को सारथी बना करके वो जीतना चाहता था, और जीत करके क्या मिलने वाला था? ऐश्वर्य तो मिलता, पद मिलता, प्रतिष्ठा मिलती, कहां चलेगा ऐसा वो पद प्रतिष्ठा? हमने देखा स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब रहते थे, शरीर शांत हुआ उस समय, कितने लोग उखटाओ वोटाओ सब, बाप रे कैसे हाल पड़ते। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, इस समय है, इसका नाम है काल। और हिंदू संस्कृति की एक विलक्षणता है कि समय का नाम भी काल है, और मौत का नाम भी, यमराज का नाम भी काल है। असली में समय ही सब कुछ खा जाता है। समयमेव करोति बलाबलम लिख दिया है, ऐसी काल है, सब खा जाता है। लेकिन कोई पुण्य आत्मा होते हैं, एक पापी व्यक्ति यदि किसी शांत अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, उसके जाने से वहां खलबली मच जाती है, और एक धर्मात्मा व्यक्ति भी कभी बुरी जगह पर पहुंच जाता है, उसके जाने से वहां शांति फैल जाती है। अर्जुन कृष्ण के साथ में बैठा हुआ है,
सारा राज
महापुरुष कुछ बोले वो जरूरी नहीं है, जिसके चरित्र में जिसके आचरण में कुछ है समाज में विधि की विडंबना यही है। आज समाज में सुनते हैं फलाना ये हो गया वो हो गया, वो कोई संत नहीं होते। संतों के लिए श्रुति में पहले ही बता रखा है, 12-12 साल बनारस में पढ़ते हैं, गुरु लोगों की सेवा करते हैं, तब संतत्व की प्राप्ति होती। ऐसे ही झंडा गाड़ने से कोई संत नहीं बनता है, आसान नहीं है। अर्जुन की यात्रा शुरू हुई थी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, दुर्योधन की यात्रा भी शुरू हुई ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए। अब दोनों के चित्त में थोड़ा भेद है, जरा बहुत बारीकी से आप समझेंगे ना तो स्थित प्रज्ञा आपको समझ में आएगा। अर्जुन ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन किसके लिए? अर्जुन ने एक बात कही गीता में, बहुत अच्छी बात कही, एसाम अर्थे नो कांक्षितम राज्यम। कृष्ण को कहता है वो आदमी का मनोबल भी कितना ऊंचा रहा होगा जो कृष्ण की आंखों से आंखें डाल करके बात करने की उसमें सामर्थ्य है। कृष्ण जैसे व्यक्ति का साथ मिलना, उसने कहा हे कृष्ण ये सब मुझे नहीं चाहिए अब। तो कृष्ण ने कहा मैंने कब बोला तेरे को चाहिए, तू तो आया था मेरे पास में। उन्होंने कहा देखो मेरे दिमाग में एक बात आई, एसाम अर्थे नो कांक्षितम राज्यम, आदमी जिनके लिए राज्य चाहता है वो पिता होते हैं, पितामह होते हैं और गुरु होते हैं। गुरु का मतलब आजकल के गुरु घंटाल मत समझना आप, रसीद लेके ही घूमते रहते हैं, जैसे चेले वैसे गुरु। गुरु मैंने द्रोणाचार्य जैसा, जिसने अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए एक लव्य का अंगूठा ले लिया, वो न्याय है या अन्याय है वो अलग बात है, लेकिन द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उसके पीछे कारण क्या है वो महाभारत पढ़ेंगे तो पता लगता है। अर्जुन कहता है मुझे नहीं लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आदमी जिनके लिए कमाता है मुझे उन्हीं को मार करके मिलेगा। देखो अर्जुन के चित्त में अंतर देखो, भीष्म और द्रोणाचार्य उसके विपरीत खड़े हैं, कृपाचार्य उसके विपरीत खड़े हैं, लेकिन विपरीत खड़े होने के बावजूद भी वो सोचता है यदि मैं जीतूंगा तो इनको दूंगा कुछ, इनके लिए कमाऊंगा, एसाम अर्थ है जिनके लिए। और दुर्योधन कहता है मैं अपने लिए इनकी भी बलि देने के लिए तैयार हूं। वो राज्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए वो भीष्म द्रोणाचार्य की बलि, यहां तक कि कर्ण की बलि देने के लिए भी तैयार है, लेकिन अर्जुन नहीं। व्यवहार में भी जब आपके चित्त में सात्विक विचार उठने लगते हैं, सत्वगुण का साम्राज्य होने लगता है, तो ज्ञान की तरफ आपकी रुचि स्वाभाविक होने लगती है। लेकिन सवाल यह है, आप किन लोगों के साथ में बैठते हैं और क्या बात करते हैं? मैंने कभी आपको इशारा किया था, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छे एक लेखक हो गए, उन्होंने लिखा है कि करण जैसा कोई दानी नहीं, करण जैसा कोई चरित्रवान नहीं और करण जैसा कोई सेवक नहीं। जो आदमी अपनी गुरु की नींद न खुले इस बात के लिए कीड़ा उसका खून पी रहा है और वो व्यक्ति अपना पांव नहीं हिलाता और वो सेवा अभिशाप बन गई, इसका कारण क्या है? इसका कारण है बुरे आदमियों का साथ करना। क्योंकि कभी कभी आप प्रेमपुरी में आते हैं, धार्मिक हैं, बहुत हैं, लेकिन आपके 10-20 कोई कभी कोई आपका रिश्तेदार ऐसा मिल गया, आपको जबरदस्ती पकड़ के ले गया, बोले चलो भाई झुंझुनवाला जी चलो उधर पार्टी हो रही है चलो, तो जबरदस्ती आपके हाथ में एक कांच का गिलास पकड़ा देगा। नहीं चाहते हुए भी हटाओगे, नहीं पियोगे, लेकिन छू तो लिया उसको। नहीं अपनी खुशी के लिए दूसरे का मन रखने के लिए तो कर दिया। ऐसे ही दुर्योधन जब द्रौपदी का अपमान कर रहा था, उस समय कर्ण के मुंह से भी एक बहुत आपत्तिजनक शब्द निकल गया, जो वो व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता था। तो कभी कभी आप बुरी संगत में बैठ करके वो बुराई कर बैठते हैं जिस बुराई को आप कभी सोच नहीं सकते, और कभी कभी अच्छी संगत में बैठ के आप इतना अच्छा काम कर बैठते हैं जिस अच्छाई के बारे में आप सोच नहीं सकते। तो जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस व्यक्ति ने ऐश्वर्य के लिए संघर्ष किया, अभी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ भी नहीं, मिला भी नहीं, लेकिन कहीं उस व्यक्ति को ऐश्वर्य की असारता मालूम पड़ने लग गई। मिलने के बाद असारता मालूम पड़ी तो क्या मालूम पड़ा? मिलने के पहले उस व्यक्ति को लगने लग गया इसमें कोई दम नहीं है। अरे पांडु का था, धृतराष्ट्र को दिया, अब हम छीन रहे हैं, हमसे वो छीनेगा, ये कुछ छीना झपटी वाला काम कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ा उसने कृष्ण को देखा, अनुभव किया, ये व्यक्ति को सहज मिला, इस व्यक्ति ने कभी जीवन में स्वीकार किया ही नहीं है, और जितनी प्रसन्नता इनके जीवन में इतनी प्रसन्नता किसी के जीवन में है ही नहीं। इसका कारण क्या है? तो कारण का जो अनुसंधान है उसका नाम साधना है। एक बात, दूसरी बात आप ख्याल रखिएगा, जो है उसी का उपयोग किया जा सकता है। जो नहीं है उसका उपयोग करने का कोई आज हमारे पास में जो साधन है जो सुविधाएं हैं जो लोग हैं उन्हीं साधन सुविधाओं और उन्हीं लोगों से हमें काम लेना है। अरे भाई ईश्वर प्राप्त करना है ना, अभी हार्ट की बीमारी हो गई है, बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा सकते तो क्या भजन करना ही छोड़ दें? साधना का अर्थ यह है जो साधन आपके पास में है जो परिस्थिति आपके पास में है उसका आपको ईश्वर के लिए उपयोग करना है, बस ये बात है। अर्जुन यहां पर लिखते हैं कृष्ण को देख करके उसके मन में, क्योंकि ऐसे पुण्य आत्माओं का साथ होने से पुण्य आत्माओं के साथ में रहने से ऐसा होता है ना कि हमारा जो शरीर है ये भी पांच भूतों से बना हुआ है तो भूतों का प्रभाव तो इस पे भी पड़ता है नहीं पड़ता। आंखें कुछ देखती हैं तो आपके मन में कुछ क्रिया पैदा होती है, कान कुछ सुनते हैं तो कुछ प्रतिक्रिया पैदा होती है। तो कृष्ण के साथ में रहने से उसके चित्त में क्या प्रतिक्रिया पैदा हुई वो आपको बता रहे हैं। जरा तो थोड़ा सा आज प्रश्न प्रारंभ कर देते हैं, प्रश्न ही प्रश्न समझ लेंगे। पहले आज अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थिति किम प्रभासित किम आसीत ब्रजेत किम, ये अर्जुन ने प्रश्न किया। हे परमात्मा, जिस व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी है, प्रतिष्ठित का अर्थ होता है स्थित, संस्कृत में स्थागति निवृत्तौ धातु है। जैसे आपने देखा होगा ना बंबई में, तो बहुत सरल बात है देखना, बरसात का समय होता और जहां पर म्युनिसिपैलिटी का वो गड्ढा बनाया होता है ना, क्या बोलते हैं नाला, तो चारों तरफ से पानी जो है उसमें बड़ी तेजी से आ जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि सारे विषयों से हट करके और आत्मा में आ गई हो, बस रुकती नहीं है इधर उधर, उसका नाम है वहां आ जाए। उसकी भाषा क्या है? भाषा शब्द का संस्कृत में ऐसा होता है प्रकाश, भा दीप्तौ लक्षण। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? क्योंकि धर्म के नाम पे जितना अधर्म होता है उतना अधर्म दुनिया में किसी के नाम पे नहीं होता। आप हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, काल नेमी ने हनुमान जी को ठग लिया था, नीच व्यक्ति का व्यवहार बड़ा सरल सहज, नहीं उसको समझना बहुत जरूरी है। जिस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आप जा रहे हैं उस ईश्वर की प्राप्ति में ही वो बाधक बन जाता है। अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे पहले लक्षण बताओ आप उसका, उसका लक्षण क्या है। जैसे आंख का लक्षण है जो देखे, कान का लक्षण है जो सुने, ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष का लक्षण क्या है जो सोने की चेन पहने, हीरे की अंगूठी पहने, कुछ कुछ ऐसी उत्पाती चीज होनी चाहिए ना, अथवा जो नंगा रहे, जो नाचे कोई गाए, क्योंकि जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सब चीजें जो है ना ये बेईमानी से की जा सकती हैं। ये की जा सकती हैं, ये हो नहीं सकती हैं। अर्जुन ने कहा पहले मुझे स्थित प्रज्ञ का लक्षण जानना है। देखो सोना आप खरीदते हो ना, तो आप कसौटी पे कस के ये क्या चीज है, बस सीधा सीधा पहले कसौटी पे कसते हो। अर्जुन ने कहा मुझे उलझना नहीं है। वह क्योंकि अर्जुन जीवन की बड़ी आदमी की लाचारी देखो, अर्जुन जानता है कि भीष्म आदि बहुत ऊंचे चरित्रवान निष्ठावान व्यक्ति हैं, लेकिन किसी किसी परिस्थितियों में व्यक्ति इतना लाचार हो जाता है। इतनी भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है और भीष्म पितामह कुछ बोल नहीं सकते। ये आदमी तो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते। कहीं न कहीं व्यक्ति, यद्यपि वहां पे महाभारत में इस बात का उत्तर दिया है भीष्म पितामह ने, अर्थस्य दासो अयम पुरुषा करके दिया है, उत्तर दिया है, वो उत्तर जमता नहीं, हमको भी नहीं जमता है वो उत्तर। बहुत विचार करके देखो, आप अपने जीवन में संघर्ष करके कर क्या रहे हो। उसने कहा मुझे स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताओ, कसौटी में कसके सोना बताओ, ये सोना सही है या गलत है, मुझे सोना लेना है लेकिन कसौटी पे कसके लेना है, बिना कसौटी पे कसे कोई कह दे ये सोना है तो मैं ले नहीं सकता। कसौटी में कसा होगा तो कोई नहीं कहेगा ये सोना है तो भी मैं ले लूंगा, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता का आधार कसौटी है, और जिसकी प्रामाणिकता का आधार कसौटी होता है फिर उसके लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। किसका नाम है? भाषा। लक्षण भाषयते अनया इति भाषा। अच्छा एक भाषा बता दो मुझे आप। दूसरी बात बता रहे हैं कि जो स्थित पुरुष हो, स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थित प्रज्ञ स्थित धी किम प्रभाषित, स्थित जिस व्यक्ति की धी मैंने बुद्धि स्थित हो गई है वो क्या बोलता है। किसके बारे में बोलता है? जब हम कुछ चीज बोलते हैं सूक्ष्म शब्दों में यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, उन शब्दों में सारा तुम्हारा दिल बाहर आ जाता है। वो शब्द बता देते हैं कि हमारी क्या औकात है। वो शब्द ये बता देते हैं कि हम क्या चाहते हैं। और वो शब्द ये बता देते हैं कि हमारी मन की स्थिति क्या है। तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? बहुत मीठी बात तो नहीं बोलता। भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करने के बाद भी हनुमान जी महाराज काल नेमी के जाल में उलझ गए। कैसे बोला होगा उसने? यदि हनुमान जी ने यह समझा होता कि स्थित भी किम प्रभासेत, तो मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी महाराज वहां उलझते। वो कहता है सब बात भूल जाओ, पहले स्नान उस्नान करो, खाओ पियो। यदि हनुमान जी ने सुना होता, वो कहते कि किसी आदमी के प्राण जा रहे हैं, एक आध केला वेला खाओ और भागो, तुमको संजीवनी ब्यूटी लेके जानी है। वो कहते नहीं, खाओ पी, पहले नहाओ साबुन लगा के, अच्छी तरह से माल मसाला खाओ यहां पर, और खाने के बाद प्रमाद आ जाए फिर काम करना। स्थित प्रज्ञ कभी ऐसी बात नहीं बोल सकता, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। सनक सुजात ने कहा धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र, आदमी तो रोज मरता है, लेकिन तुझे एक बात बताऊं कि आदमी की सबसे बड़ी मौत जो है वो प्रमाद है। जो आदमी को ऐसा मारती है कि आदमी को मालूम नहीं पड़ता, बिस्तरे पे लेटे लेटे, कुर्सी पे बैठे बैठे, चाय पीते पीते, भोजन खाते खाते, प्रमादो वै मृत्युम ब्रवीमि। इसलिए कहता है कि स्थित भी किम प्रभासेत। दो लक्षण, दो की बात हो गई। अच्छा, अभी बोलते हैं किम आसीत, वो बैठता कैसे है? ज्ञानी के बैठने में भी एक खासियत होती है, उसका बैठना भी विलक्षण होता है। कैसे बैठता है? ज्ञानी के चित्त, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, प्रसंख्याने पि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्ममेक समाधि। ज्ञानी के चित्त में प्रतिपल ईश्वर का महत्व रहता है, और प्रतिपल ईश्वर का महत्व रहने के कारण उसके चित्त में किसी व्यक्ति का महत्व नहीं हो पाता। देखते हैं आजकल जो महापुरुष है ना, अभी कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, सब ऐसे ही हैं। हाँ, बाहर वाले भी कोई अंदर वालों से कम नहीं है। देखा कैसा भगत आ रहा है, फल की टोकरी बड़ी है, माला साथ में है, उसकी कुर्सी हिलने लगती है। अर्जुन ने कहा जरा मेरे को बताओ थोड़ा सा, ये फल आज नहीं तो कल सड़ जाएंगे, तुम भी खाओगे तो भी तो सड़ेंगे, इनकी तकदीर में लिखा ही सड़ना है, बने ही उसलिए हैं। सत्राजीत ने कृष्ण को कहा ये सेमंतक मणि आप ले लो, जब बाद में आरोप लगने के बाद मुक्त हुआ। कृष्ण ने कहा नहीं, हमें सेमंतक मणि से हमें क्या करना है, यदि विवेक आपका है। मैं अभी कहीं पे भागवत चित्तरमाला कर रहा था, दैव योग से दशम स्कंद का उत्तरार्ध चल रहा है वहां पे, तो वहां पे कुछ ऐसा चलता है कि कोई श्लोक छोड़ते नहीं है, क्रम से चलता है। वहां पे कृष्ण का चरित्र चल रहा है आजकल, उसमें लिखा है कि कृष्ण की जो दिनचर्या बताई है वहां पे, कि सुबह उठ करके वो किस प्रकार समाधि में बैठते हैं और किस प्रकार आत्मचिंतन करते हैं, क्योंकि वृत्तिसारूप्यम इतरेतर, जैसे ही बाहर की दुनिया से आप जुड़ते हैं चाहे अनचाहे आपका व्यवहार राग द्वेष पूर्वक हो जाता है। इसलिए कहते अर्जुन कहता है कि जरा मेरे को बताओ तो ये स्थित प्रज्ञ बैठते कैसे हैं, इनकी स्थिति कैसी होती है। और आगे बताते हैं, ब्रजेत किम, अच्छा, और स्थित प्रज्ञ पुरुष चलते कैसे हैं, जाते कैसे हैं। जिस व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर हो गई, ऐसे तो ऐसे व्यक्ति अभी मिलते ही नहीं है। कहीं किसी का सौभाग्य हो, कभी मिल जाए देखने के लिए, एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर संस्कार भी तभी रहते हैं जब साधना बहुत ज्यादा प्रबल होती है। भागवत में एक ही जगह उल्लेख आता है, ऐसे तो बहुत ऐसे कहानियां तो बहुत आती हैं, लेकिन प्रामाणिकता से उल्लेख एक ही जगह आता है। सुखदेव जी महाराज ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिस समय जड़ भरत जी महाराज को मृग योनि प्राप्त होती है, उस समय उनको स्मरण आता है थोड़ा सा, शरीरांतर जब प्राप्त होता है ना, भागवत जी में लिखा है दशम स्कंद में, व्रजन तिष्ठन परेकेन यथा वा एकेन गच्छति, ऐसे एक कीड़ा होता है कोई, व्रजन तिष्ठन परेकेन, जब ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण करता है उस समय प्रायः सब विस्मृति हो जाती है। बहुत गहरी विस्मृति हो जाती है। आप लोग स्वाध्याय के श्रोता बैठे हैं, ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय के प्रथम जब प्रारंभ होता है वहां सूत्र आता है, तदनंतर प्रतिपत्तो रंगति च संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये जब जीव जाता है यहां से तो कर्मों से संपरिस्वक्त होके जाता है। संपरिस्वक्त समझते हैं, जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो आटे के प्रत्येक अंश में पानी 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 होता है, तभी आटा गूंथ जाता है। पानी होता है नहीं तभी तो वो बनता है रोटी बनाने लायक, तो किससे गूंधा हुआ है वो? तो जैसे वो आटा पानी से गूंधा हुआ है, ऐसी ये जीव कर्मों से गूंथा हुआ है। लेकिन एकदम विस्मृति हो जाती है। लेकिन भरत के बारे में सुखदेव जी ने इस चीज का उल्लेख किया है कि उनको मृग के शरीर में भी स्मृति है। क्योंकि उनको जो ये मृग के शरीर की गति हुई वो हुई मृग के बच्चे से मोह के प्राप्ति के कारण, लेकिन उनका मोह और साधना दोनों में कहीं कमी नहीं थी। ये बड़ी बात होती है, हम लोगों का मोह होगा तो साधना एकदम छूट जाएगी नहीं? जब किसी से मोह होता है तो साधना, तुम्हारे किसी से प्रेम हो जाए अब क्या प्रेम होगा? तब प्रेमपुरी आओगे? प्रेमपुरी के बहाने वहां चले जाओगे? क्योंकि ममता और साधना एक साथ चल नहीं सकती। इनका चरित्र यदि वहां पढ़ते हैं तो इनकी साधना में कहीं कमी नहीं है, लेकिन बीच बीच में विक्षेप हो जाता था। तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा की, उन्होंने कहा कि इनको वहां पे मृग के शरीर में स्मृति आ गई, और साधना में जो स्मृति होती है ना, वही संस्कारों का दर्पण होता है। समझते हो? दर्पण समझते हैं ना, शीशा, वही अपनी गलती मालूम। जैसे आप शीशे के सामने होकर के श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार का अर्थ क्या है? श्रृंगार का क्या अर्थ है? एक माई से हमने पूछा श्रृंगार का क्या अर्थ है, तो बुढ़िया थी, बोले मैं अभी करती नहीं हूं। श्रृंगार का अर्थ होता है कि जो आप नहीं हो वो दिखने की कोशिश कर रहे हो, यही है श्रृंगार का अर्थ, और कुछ नहीं है। जो नहीं हो वो दिखने की कोशिश कर रहे हो, यदि जो हो वैसा ही दिखना है तो फिर श्रृंगार की क्या जरूरत है? वो नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं कहता, लेकिन उस साधना में वहां लिखा है सुखदेव जी महाराज ने कि भरत जी महाराज को अपनी गलती मालूम पड़ गई। गलती का एहसास हो गया, और ये शास्त्रों की एक परंपरा है, आप लोग सुनते हैं नारद जी महाराज से लेकर के छांदोग्य से लेकर के ये भागवत, जहां आदमी अपने जीवन में अपनी गलती स्वीकार करता है वहां से आदमी के जीवन में सुधार प्रारंभ हो जाता है। गलती स्वीकार कर ली उन्होंने, बचाना सही था बच्चे को, फिर बाद में क्या होगा कैसे होगा? यो लोक त्रयमाविष्य विवर्तव्य ईश्वर, ये जो स्मृति वाक्य है इस पे अविश्वास हो गया। लेकिन भगवान भी कृपा करते हैं, कृपा के कोई पात्र होते हैं, तो जैसे भरत जी महाराज कृपा के पात्र हैं, ऐसे ही अर्जुन भी कृपा का पात्र है भगवान कृष्ण की, कि ये जो संघर्ष चल रहा था ये ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा है, और इस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के बीच में अर्जुन के मन में ईश्वर की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। ये विपरीत हैं दोनों। बाहर का युद्ध ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए है, पद प्रतिष्ठा मान की प्राप्ति के लिए है, और ये अंदर का जो युद्ध है ये ईश्वर की अनुभूति के लिए है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो ईश्वर की प्राप्ति, ये जो अर्जुन के मन में बात आई, तो भाष्यकार भगवान लिख देते हैं अंतिम में, स्थिर प्रज्ञस्य लक्षणम अनेन श्लोकेन पृच्छति। इस श्लोक के द्वारा कहां तो युद्ध शुरू हुआ था ऐश्वर्य हस्तिनापुर की गद्दी के प्राप्त करने के लिए, और कहां बीच में एक नई बात ये शुरू हो गई। हमने इसके ऊपर बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद हमें ये पता लगा कि ये कृष्ण का जो साथ है, इतने दिन कृष्ण के साथ में जो रहा अर्जुन, उसका परिणाम ये है कि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो उद्यम चल रहा था वही उद्यम अब ईश्वर की अनुभूति का हेतु बन गया, क्योंकि भगवान कृष्ण का साथ है। और हम लोगों का क्या होता है कि ईश्वर की अनुभूति के लिए जो उद्यम करते हैं, और तुम लोगों के एक साथ के कारण वही फिर जो है ना ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण बन जाते हैं। तीन तिकड़म। इसलिए अर्जुन जो है उसका जीवन इतना महान है। अब कल से जो है ना समय पे यदि आओगे, इसकी थोड़ी स्थित प्रज्ञ कल से प्रारंभ होगा, थोड़ी भूमिका भी भाष्यकार ने बहुत अच्छी इसकी लिखी है, समय पे आइए, थोड़ा श्रवण करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज तो इतवार भी है, शायद क्या क्या होता है भगवान जाने।